شادی کرنے چلا ہے اس इसको उसने जनाबत का पता नहीं, मैं इसके बाप को बोला। मौलाना ने वही थोड़ा नाराज होकर कहा कि तुम बेटे की शादी कराने चल रहे, बेचारे को पता भी नहीं है उसने जनाबत का। मुझे भी नहीं पता तो ये तो जाहिर लतीफा है, लेकिन हकीकत है ऐसी बहुत सारे लोगों को। पाकिस्तान में कोई 60-70 साल का बूढ़ा आदमी मुझे मिला, बड़ा गुस्से में था। कहला ये मौलाना का नए नए मसले ले आते हैं, आज एक मौली साहब ने अजीब उल्टा मसला बताया। क्या बताया कि उन्होंने बताया कि जब आपकी बीवी नापाक है या मुराद ये कि हैज में है, मेंस्ट्रुएशन में है, तब वो नमाज नहीं पढ़ सकती तो आप बीवी के पास नहीं जा सकते। ये तो मैंने आज से भी सुना है। मैंने कहा आप जाते रहे? हाँ 60 साल से नहीं। कुरान मजीद की आयत है ये सलून का नंग मही खोलो आजम, जो पूछते हैं इसके बारे में इसके लिए मौत जो है हराम है, बीवी के पास जाना। शादी के बाद दूल्हे दुल्हन के जो बिस्तर होते हैं उनको ये पता नहीं होता है बिस्तर किस तरीके से होना चाहिए, किबला रुख हो के लेटना हराम है, ये भी नहीं पता नहीं। तो बहरहाल आज मुझे अभी 2 घंटे की मजबूरी हुई है, आप भी थके हुए हैं, इसके लिए बाकायदा इंशाल्लाह एक प्रोग्राम फसल होना चाहिए। आज हम तो से चंद बातें करते हैं। देखिए शादी के बारे में पहले तो लोगों का नजरिया अलग है, वो यहाँ हमारी बहस चल रही है कि थिंकिंग डिपेंड है बिलीफ पर, थिंकिंग से फीलिंग और फीलिंग से एक्शन और एक्शन से हैबिट्स बनती है इंसान का करेक्टर बनता है। शादी के बारे में लोगों के मुख्तलिफ नजरियात हैं, कब करनी चाहिए, किस उम्र में करनी चाहिए, खुद एक ये बहस है। उमूमा हमारे पाकिस्तान इंडिया में ये बहाना होता है कि भाई बच्चा जो है उसको नौकरी मिल जाए तो फिर शादी लाए गए, नौकरी नहीं है तो बूढ़ा भी हो जाए क्योंकि शादी के मुस्तहक नहीं है, ऐसे ही बैठे। लेकिन यहाँ पर यूरोप में तो ऐसा मसला नहीं है, अगर शादी हो जाए और बच्चे भी हो जाए तो सोशल सेक्रेटरी से ज्यादा पैसे मिलते हैं। और यहाँ भी बूढ़े हो जाते हैं, बड़ी उम्र हो जाती है उसके बाद जाके शादी करते। अब ये नजरिया जाहिर है कि पाकिस्तान का जैसे माहौल है हम फॉलो करते हैं, अक्सर पब्लिक बेचारी फॉलो करती है बड़े लोगों को, बड़े लोग उनकी नज़र में पैसे वाले होते हैं या हुक्मरान होते हैं और फिर वो हुक्मरान जो है वो वेस्टर्नाइज होते हैं, वो फॉलो करते हैं यूरोप को। इस तरह से पूरी सोसाइटी जो है इस रास्ते पर चल निकलती है। देखिए यूरोप का सिस्टम ये हो रहा है, आप यहाँ रहते हैं, इनके लिए फर्क नहीं पड़ता है शादी करें या न करें, ये स्कूल में कॉलेज में इनके 10-10 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, इनके यहाँ कोई मसला भी नहीं है। हालांकि इनकी बाइबल में तो वही कुछ है जो हमारे यहाँ है, हजरत ईसा कहते हैं कि वो आँख जो तुझे जहन्नमी बनाए तो उस आँख को निकाल दे, ये बाइबल में आ गई है, मगर ये आँख से भी आगे बढ़ चुके हैं सारे काम कर लेते हैं। तो यहाँ तो वो गुनाह का तसव्वुर भी नहीं है कि भाई बगैर निकाह के घूम रहे हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये माशरा तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, बाइबल से दूर हो चुका है। मगर हमारे यहाँ वो आज भी है, उनके यहाँ ये चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, की गई है, एक अलग बहस है। और हमारे यहाँ तो ये है कि अगर आँख से लज्जत की निगाह से देखें लड़की लड़के को या दोनों तो ये गुनाह बहुत बड़ा है, बहुत सख्त सख्त रिवायत है। तो अब इस हालत में एक नौजवान जो है ये उसकी फितरी नेचर की डिमांड निशानी, ये ऐसी चीज नहीं है तो वो इजाफी मांग रहे हैं, नेसेसरी मांग रहे हैं। जैसे लड़की लड़का बालिग होते हैं ये एक फीलिंग है, नेचुरल नेचर फितरत की। इस्लाम ने कभी फितरत के खिलाफ जंग नहीं की है, उसको दबाया है एहसन तरीके से, बेहतरीन तरीके से। जो फितरत के तकाजा है वो कुरान का पूरे करो। क्रिश्चियनिटी में यह था कि इन्होंने फितरत को दबाया कि शादी एक फिक्री अमल, इन्होंने कहा नहीं अल्लाह वाले बनना है शादी नहीं करो, गैर फिक्री था। उस पर फिक्री अमल का नतीजा निकला कि जिस चीज को दबाए उतनी और ज्यादा बढ़ती। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ कितनी खराब कार्य है, हर मुल्क में 50-50 हजार इंग्लैंड की रिपोर्ट है नाजायज बच्चे पैदा होते हैं, एबॉर्शन अमेरिका में मिलियंस में होती है, कातिल है वो ना है इसलिए होता है। तो इस्लाम में कभी भी फितरत जो है वो ऐन इस्लाम है, कुरान की आयत नहीं है। ये खुद एक लंबी बहस है, माँ को नहीं नीचे नदी से पूरी फितरत में बेहतरीन हदीस की शरह की कि कैसे हदीस भी है कि हर इंसान की फितरत जो है इस्लाम पर है। तो इस्लाम ने फितरत के खिलाफ काम करने को कहा। जब बच्चा मालूम होता है उसे एहसास होता है कि एक भूख है, प्यास है, जो उस भूख प्यास से अलग है, एहसास होता है। अब अगर इसकी भूख प्यास भी न बुझाई जाए और इसकी तरबियत न की जाए तो ये बच्चा या बच्ची अपनी दुनिया भी बर्बाद कर सकते हैं, कई खानदान से बर्बाद हो, क्योंकि कोई तरबियत नहीं है। और उलमा अखलाक और साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं जो सबसे खतरनाक पावर अल्लाह ने इंसान को दिया है, हत्ता के एंगर से भी खतरनाक, वो सेक्स का पावर, ये सबसे ज्यादा खतरनाक। इसमें तूफान आते हैं और ये तूफान इतने खतरनाक होते हैं हर चीज को बर्बाद करते हैं, इंसानियत शराफत गैरत ईमान, ये तूफान इतने खतरनाक होते। अब कोई बच्चे को पता भी नहीं। मसलन आप देखिए कि यहाँ पर जो सेक्स एजुकेशन देते हैं जो यहाँ नॉर्थ अमेरिका में, वो सेक्स एजुकेशन जो है मनफी होती है, मुसबत नहीं होती। सिर्फ उसमें यह सिखाया जाता है कि भाई आप ये यूज करें ये यूज करें, यानी सारे काम करें मगर बच्चा पैदा ना हो, या ज्यादा से ज्यादा एड्स से बचिए। ये इल्म जो वाजिबात में से है, खुद ये इल्म भी हराम से किस तरह से इंसान बचे, किस तरह से हलाल लज्जत हासिल करे, ये खुद सेक्स एजुकेशन का इस्लाम ने एहसन तरीके से बेहतरीन तरीके से बताया गया कि हत्ता के बच्चा बालिग होने से पहले गुनाहान कबीरा से उसके पास ही होना चाहिए। कौन से गुनाह कबीरा है? उस गुनाह कबीरा में खुद जो है जीना जो है या होमोसेक्सुअलिटी, तो ना होना है। तो अपने बच्चों को इल्म दो कैसे ये चीजें बचे, ये मुसीबत है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव एजुकेशन होनी चाहिए बच्चे। स्कूलों में जो सिखाते हैं तो एक टोटल मेरे पास ले आए थे कुछ स्कूल के टीचर्स के, इसको आप इस्लामी बना कर दें। तो क्या मैं इनको बताया कि देखिए जो, तो उसने मैंने देखा कुल्लन जो ये इंग्लैंड के थे स्कूल में पढ़ाते, इस्लाम उसमें पॉजिटिव कोई पॉइंट ही नहीं है, सारा नेगेटिव है। कि जो बच्चा बच्ची देखेगा सिर्फ उसके इमोशन में हिजान पैदा होगा, कुछ उसे फायदा तो नहीं। तो इस एतबार से भी इस दवाजी जिंदगी से पहले जैसे लड़का लड़की बात हो वालदे कुछ बेचारे पढ़े लिखे होते हैं फिर भी बच्चों को नहीं बताते, न बताने की वजह से उन्हें गुस्ल उतारा नहीं आता जब भी मैंने बताया। और बाज बच्चियां साइकोलॉजी मरीज हो जाती, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता खुद मेंस्ट्रुएशन। अब यहाँ तो मसलन बताते हैं बाज पाकिस्तान इंडिया कुछ लोग बताते नहीं बच्चों को, शर्माते हैं। तो बस बच्ची जो कभी वो देखती है कि एकदम खून आ गया उसे पता ही नहीं है, तो वो साइकोलॉजी मरीज हो जाती है सकती है, शॉक होता है कुछ क्या हो गया उसे पता ही नहीं कुछ फिजिकल बॉडी के बारे में इसमें सुनी। तो इस्लाम ने इजाजत दी है कि ये चीजें जरूरी है ताकि बच्ची बच्चे को गुस्ल तो उतारना है, आप नहीं बताएंगे ये कौन सा दीन है, इसे बताए खुश मुकदस लोग ये दीन में इसकी जात नहीं है। हम बच्चों को वाजिब भी ने बताया उसे भी ने बताया कि ये हमें शर्मा दी। तो ये वाले होने से पहले बच्चों को मालूम होना चाहिए। अब आइए कि ये जो फिजिकल एक नेचुरल डिमांड है इसको कहें दबाना से ही इस्लाम, दबाना किस हद तक इंसान दबा सकता है, कहां तक जा रही इस्लाम। अब इसमें हदीस भी है और इसमें अभी रिसेंटली एक बीमारी का भी पता चला है काफी साल में, कि फर्ज करिए कि हम किसी नौजवान को बहुत ज्यादा मजहबी बना दें, सो बोलेंगे बिल्कुल तुम सेक्स की तरफ सोचो नहीं कुछ हो तो, जैसे मुझे ईसाई जो है बिल्कुल अल्लाह अल्लाह बनाने के लिए शेयर करते हैं शादी का, पहले तो इस्लाम ने इससे मना किया और ऐसा हुआ भी है उसके खतरनाक नतज मसलन बच्चियां हैं माहौल भी मतलब पाकिस्तान में होता है कि अंदर हवेलियों में घरों में रहते हैं मजहबी होता है नमाज होता तो गंदी चीज़ें नहीं देखते हैं उनको इस तरीके से कोई ख्याल भी इंतजाम नहीं है, लेकिन खुद बॉडी फिजिकली सिस्टम इंसान का यह है जो इस बीमारी के बाद बता रहा हूँ मुझे रिसर्च से पता चले कि अगर इंसान ये अमल जो एक कुदरती है फितरी है 20-30 साल तक भी अंजाम न दे तो इम्यूनिटी सिस्टम जो है इंसान का अगेंस्ट हो जाता है उसके उसके अगेंस्ट फायर करता है। एक तो यह है ना जैसे बाल बीमारियों में इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है काम नहीं करता, ये उल्टा रिवर्स में चलता है क्योंकि हम नेचर के खिलाफ ही हैं और ये इस तरह की बीमारियों का इलाज भी कम है क्योंकि इम्यून सिस्टम आपका अगेंस्ट चल जाता है फायर करता है बजाय कि वो रोके वो ही आपको दुश्मन हो जाता है। ये फिजिकल और इस्लामी अखबार से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह जो है मेरी ऐसी सुन्नत है अगर इनको वो छोड़ दे नहीं समझूं मैं तो मेरी उम्मत से खारिज मुसलमान ही ये कहने के लिए सुन्नत है मगर ये ऐसी सुन्नत है अगर जिंदगी भर शादी न करे तो नहीं समझ उम्मत मेरी उम्मत से खारिज। और यहां पर भी एक मसला उलमा ने सबसे पूछी एक माँ मसला होगा क्या कर एक इंसान को गुनाह में गिरने का खतरा है उसके लिए निकाह वाजिब हो जाता है। अब जो निकाह उसे मयसर हो यानी हलाल तरीके से, वो कंट्रोल नहीं कर सकता, आंखों पे नहीं कर सकता, अपने बदन पे नहीं कर सकता। और मसलन बहुत साल पहले एक बेचारा नेक आदमी था बहुत, अमरीका पढ़ने गया लड़का, वो वहाँ यूनिवर्सिटी में लाया, लेकिन संभाव होते हैं कॉलेज में इतना उस पर बम्बार्डमेंट रही नहीं, तो वो वहाँ से पढ़ाई छोड़ के भाग इंग्लैंड आ गए। समझना कि इंग्लैंड का अच्छा माहौल होगा, तो यहाँ उससे बदतर था या उस जैसा ही था। तो वो मस्जिद में आया, काफ़ी मेरे जहन में इतना प्रेशर है कि गोया मेरा सर फट जा रहा है, और एक मकसद लेकर भी आया हूँ, आराम भी नहीं करना चाहता हूँ, और मेरी साइकोलॉजी यानी नफ्सियाती तौर पर बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, इतना प्रेशर है। आखिर जो है इस मेरे ख्याल सारे जितने पावर्स इमोशन है, सबसे स्ट्रांगेस्ट बॉडी है सेक्स जो है, इमोशन बहुत खतरनाक है, और लोग जो है इसीलिए बड़े बड़े गुनाह भी कर लेते हैं, कोई तरीका नहीं कह सकते। बहरहाल वो इतफाक से फिर हमने उसकी शादी करा दी, बेचारा खुश हो गया। इसीलिए हम निकाह के लिए भी ये देखें कि अगर किसी का काम कहीं करवा देते हैं तो एक हज का सवाल है, लेकिन आप किसी के लिए हज तो बहुत बड़ा मुश्किल है, ये भी इतना मुश्किल काम है, तो हज के बराबर इसका सवाल भी रखा गया है। तो ये दो चीज़ें काफ़ी हैं, डिटेल में नहीं जाते, दलील और ज़्यादा हैं कि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि आप इसे तर्क कर दें, ना मजहबी तौर पर आप छोड़ सकते हैं, ना हेल्थ वाइज। फिर दूसरी हदीस है कि निकाह जो है वो अगर आपने कर लिया तो आधा दीन आपका महफूज है और आधा ईमान, यानी आधे दीन ईमान का ताल्लुक निकाह से है, ये और इम्पोर्टेंस है। जब तक निकाह नहीं कर पा रहे आधे दीन को खतरा है, अभी दीन 50% जो है इस पर डिपेंड करता है कि आप जो है ये इमोशन जो है आप उसको सही यूज कर दें, सही कंट्रोल में है। तो अब आपने देखा कि इस एतबार से हम नहीं कर सकते फॉलो उन चीजों को, उस नजरिए को कि जनाब जब कमा लें तो फिर होगा। अब इसमें फिर लंबी बहस हो जाएगी, कुरान मजीद में अल्लाह ने वादा किया है नहीं रोको इसका कुछ था। अभी हम लोगों ने खूब इसे बुध बनाया, यानी हम आशरे के इस बुध को पूज रहे हैं। निकाह यानी 10 लाख, 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल में दावत देनी है, 200 आदमी आने हैं, 50 जोड़े बनने हैं, ये करना है, इतना सोना करना है, ये कहाँ इस्लाम है? इसको हमने एक बुध बनाया हुआ है, आसान काम को हमने मुश्किल तरीन बना दिया, और ये पूरी जानेंगे शैतानी निजाम की पका के। तो शैतान निजाम बाकी तब रहता है जब ये बुध होते, इसमें निकाह वाकई बुत है, उसको पूछ रहे। कहीं पर लड़की है तो जनाब लड़की की शादी कब होगी, जब दूल्हे को गाड़ी मिल जाए, ये भी जाती मुस्कान वगैरह भी है। और कहीं पर ये है कि वो जनाब हमारे पठान इलाका जो है सरहद वगैरह, मुझे 2 लाख दें तो लड़की मिलेगी, यानी वही शैतान कभी उस एंगल से मारता है, कभी उस एंगल से मारता है, रुकावटें खड़ी करता है शैतान शादी में, और कुछ भी नहीं। तो ये असर बहुत परस्ती के बड़ा खतरनाक बहुत है जिसे नौजवान तबाह हो रहा है। आप देखिए अगर आप ये हदीस सुने के बैलेंस लाइफ में कैसे आपके बैलेंस बहुत जरूरी है। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि बैलेंस लाइफ में तब होगा जब 24 घंटों को 4 हिस्सों में तकसीम करें, एक हिस्सा रिस्क रोजी कमाने के लिए। अब ये लोग यहां पर सूदी निजाम है, हर चीज सूट में मिल जाती है, बड़े घर महेश होता है, बड़ी गाड़ियों का, फिर वो एक हिस्सा नहीं पूरे हिस्से जो है कमाने भी लगा देते, फिर मेरा टेंशन स्ट्रेस ये सारी बीमारी दिन रात कमाना कमाना, पर एक हिस्सा 24 घंटे में एक हिस्सा जो है लाइफ का रिस्क है, एक हिस्सा जो है इबादत अपने रब के साथ मानवियात रूहानी गजा हासिल करने, इसमें भी बैलेंस नहीं है कि बहुत ज्यादा इबादत और दूसरी चीजें छोड़ दें, बैलेंस होना चाहिए। नंबर 3 जिस्मानी लज्जत है, हिस्सा माइंड के लिए बैलेंस लाइफ के लिए ये हिस्सा है इंसान की जिंदगी, घर के लज्जात जो है इस तरह से बैलेंस नहीं होता, बस अच्छी गजा पानी हो गया ये हो गया, जिस जिस्मानी लज्जत है सोना पूरी नींद पूरी करते हैं आप कमाल कमाल पैसे के पीछे, सेहत खत्म हो जाती है, बीमारी मुबला होती है, आप जिसम खुद बड़ी लज्जत जो है निकाह है जिसम के लिए। और चौथा ऐसा जो है मोमिन मुस्लिम रिश्तेदार दोस्तों के साथ मुलाकात उनकी मदद उनकी है, ये जबरदस्त जो है फार्मूला है, जिंदगी में बैलेंस आएगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, जब जिंदगी आप बैलेंस होती है सारे प्रॉब्लम क्लियर होते हैं। तो जिस्मानी लज्जत खुद जो है हुक्म दिया है कि आपके जिस्म ये जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन क्योंकि हमने निकाह को बुत बनाया हुआ तो नौजवान बेचारे और नौजवान लड़की लड़के दोनों जो है इस वजह से मालूम है, उस वजह से साइकोलॉजिकल परेशानी तो इलेक्ट्रिकली भी गैस लाइफ है। लॉस एंजलिस में आज से कई साल पहले एक इसी तरह का प्रोग्राम जैसे मिला था स्कूल में, तो मुझसे पूछा गया कि यहाँ के बच्चे जो है ना ये जो बम्बार्डमेंट है इनके ऊपर सेक्स यहाँ जाए जो भी एक बार चीज जो है वही नजर आती है, इतना प्रेशर है, किस तरीके से बच्चों को बच्चे को बचाए, घंटे आधे घंटे की तकलीफ थी। तो हमने कहा अपने इस डिमांड को आप क्यों दबाते हैं जो इस्लाम ने भी नहीं कहा, हलाल फूड खाओ, हलाल फूड चोरी नहीं करेगा बच्चे, हलाल लज्जत उसे दें। मैंने कहा अभी लड़के लड़कियां जो मिलते हैं यहाँ यूरोप अमरीका में वो कहते हैं जब स्कूल में हम जाते हैं तो लड़कियां भी कहती हैं लड़कियां खुश होकर कहते हैं हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता है, तो दूसरी लड़कियां कहती हैं कि तुम शायद ना इधर हो ना उधर कोई दरमियानी मखलूक हो, ना तुम लड़की हो ना लड़का बीच वाली हो तुम्हारा कोई बात करनी है, यानी यहाँ उल्टा जो है जो गुनाह न करे उसको उसका मजाक उड़ाया जाता है, गुनाहगार को नहीं कहा जाए वो गुनाह कर, वो एक फैशन ऐसा होता है। मैंने कहा यहाँ स्कूल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आम है, आपको किसने कहा है कि आप जो है निकाह करें जाके रजिस्टर करें अपने बच्ची बच्ची को, बालिग होने से पहले अपने स्टैंडर्ड अपने मैं मुताबिक देखें कोई अच्छा लड़का नहीं लड़का, आप इनको निकाह भी दो तरह के, एक निकाह जो है जिसमें आप मुद्दत मुहैया कर सकें, एक में मुद्दत नहीं फॉर एवर, और इन दोनों निकाहों में कोई फर्क नहीं है, उसी तरह से पढ़े जाते हैं, बल्कि मुद्दत जो मुअय्यन करते हैं 10 साल 20 साल जो भी उसमें एक जुमला इजाफी होता है, निकाह भी होता है जो हम पढ़ते हैं उसमें इसमें कोई फर्क नहीं है। तो आप बच्चे बच्चे को मालूम कर दें, मालूम हो जाएंगे तो गुनाह से बच जाएंगे, पीस ऑफ माइंड रहेगा, अगर इन्होंने आपस में एक दूसरे को समझ लिया तो आगे चल गए इनका निकाह हो गया, न तलाक होगी न झगड़े होंगे। और इसमें कई फायदे हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं है, जैसे वो निकाह जिसमें मुद्दत मुअय्यन आप कर सकते हैं कि भाई 1 साल के लिए हम बाहर ना हो जाते, यही वो देख सकते हैं, सिर्फ देखने के लिए भी हो सकता है क्योंकि इस्लाम ने कभी बुरी नीयत से किसी को नहीं देखो, आपने सिर्फ बातचीत करने इस हद तक आपकी दोस्ती उसमें आप शर्त रख दें, नहीं, आपने उसको मुठी पहनाना, इसे मांगनी होती। मांगनी कोई इस्लामी रस्म नहीं, हमारे यहाँ होती है हिंदू की रस्म। आप एक और शर्त भी रख लें कि हम टच भी कर सकते हैं दूसरे को, हाथ पकड़ के चल भी सकते हैं, शॉपिंग भी जा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। या आप कहते हैं कि नहीं, मैंने जो है ये शर्तें नहीं रखनी, बिल्कुल जैसे वो निकाह है वैसे ही निकाह, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये इंसान खुद पर इसका डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। सिर्फ एज ए फ्रेंड किसी के सामान हो सकते हैं, एक हम और भी हम टच भी कर सकते हैं दूसरे को, एक ही नहीं कि बिल्कुल मियां बीवी कर देते हैं। क्योंकि आप देखिए, मैंने अर्ज किया कि ये भी इस्लाम में भी इसी तरह से एक चीज को दाखिल किया गया जो इस्लामी नहीं है, जैसे क्रिश्चियन में है कि भाई निकाह न करो तो अल्लाह वाले बन जाओ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये निकाह जो मुद्दत मौजूद वाला था, खलीफे अव्वल के जमाने में भी था, ये दूसरे खिलाफत में इसको आगे जायज नहीं। हालांकि कुरान में सूरह निसा में उच्चतर निसा वाली आयत भी मौजूद है, हदीस भी मौजूद है, खुद हजरत साहब फरमाते हैं कि ये निकाह जो मुद्दत वाला है, अगर ये हराम ना होता तो कोई बंदा जिना नहीं करता, जिना वही करता तो बहुत ही बुरा आदमी है, बहुत मजबूत आदमी जिना करता। अब आप देखिए, एक आदमी कई ऐसे वाकयात हुए, एक लड़का लड़कियां पढ़ने आते, उन्होंने यह शादी नहीं करनी मगर उन्हें इतना पैसा खर्च किया है उन्होंने पढ़ने। लेकिन कई बीमारियां औरतों को भी हो सकती हैं, मर्दों को भी होती हैं निकाह न करने की वजह से, साइकोलॉजिकली भी फिजिकली। अब बताइए कि वो बेचारा क्या करे, अब उसने 10,000 pounds खर्च किए पढ़ने के लिए, अब उसका एक जिंदगी का मकसद है, गोल है, और यहाँ इस बीमारी में मुब्तला है कि डॉक्टर कहने सिखा दिए कि तुम जाके शादी कर लो, शादी या नहीं करना चाहता। तो इस लिहाज से निकाह जो है मुद्दत मुअय्यन वाला, ये मुश्किल हल करता है। नंबर दो, यहाँ पर क्योंकि मुश्किल ये है कि माहौल का असर होता है, यहाँ की बच्चियां या बच्चे जो है ये तलाक को कोई ऐब नहीं समझते, क्योंकि यहाँ तो चार में से तीन औरतों को आम तलाक मिलती है, डिवोर्स एक औरत 10-10 तलाक ही मिलती है। पाकिस्तान इंडिया में तलाक औरत के लिए बहुत बड़ा ऐब है, वो मर जाती है, दुल बर्दाश्त करती है, सब तो तलाक नहीं लेती, यहाँ तो माहौल का असर होता है। यहाँ तलाक ही जहाँ होती है तो उसमें कोर्ट में बड़ा पैसा खर्च होता है, दुश्मनी अलग होती है, मगर निकाह जो मुद्दत मुअय्यन है उसमें असल तलाक है ही नहीं, तलाक ही नहीं। अगर आपकी नहीं बनी तो आप जो है अलग होते। 95 में मैंने जब स्टैनमोर में था, मैं सबसे बड़ी जमात थी इंग्लैंड की, तो उसमें बहुत बड़े केस आए मेरे पास, मैंने फिर इस पर जोर दिया, तकलीफ नहीं थी उस जमाने में, मुश्किल था क्योंकि लोगों ने ये बहस सुनी हुई थी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी आम हो गए। मैंने कहा इस लानत से बचें, तलाक से भी, और जो आपस में लड़ते हैं कोर्टों में जाते हैं, एक लाख पाउंड आप देते हैं जाके दूसरों को, आप लोग एक साल के लिए निकाह जो है ना मुद्दत मुअय्यन वाला कर लो, उनमें या तो सिर्फ बातचीत वाला या मंगनी, तो कोई इस्लाम में नहीं, आप लोग पहना दें, तो एक दूसरे का मिजाज देखने के लिए कि भाई इसकी तबीयत कैसी है, इसमें गुस्सा है, कंजूस है, बखील है, सखी है, क्या है, ये सब चीजें देखने को होती। अगर मिजाज बन गया तो बिस्मिल्लाह फिर पूरा निकाह कर। उसमें दो खुद मैंने ये निकाह पढ़वाए थे। अब एक लड़का पायलट था, अमरीका का लड़की आनी थी, एक साल उनकी नहीं बनी तो कोई तलाक की जरूरत नहीं है, न दुश्मनी हुई न कुछ हुई, एक जो है एक साल उन्होंने एक दूसरे को देखा, पसंद किया, उनके बच्चे भी हैं सब कुछ। तो मैंने अर्ज किया कि ये हो सकता है, सॉल्यूशन है हमारे पास, मगर हमने खुद ही बुतों को पाल रखा है और उसकी पूजा कर रहे और उसकी वजह से बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। तो चलिए ये एक मौजू हो गया कि इसकी मुद्दत जो है, जैसे इंसान बालिग होता है उससे पहले वालदेन को भी, अगर वालदेन लिखी नहीं तो खुद इंसान ने इसके लिए ऐसा बंदोबस्त करना है कि ना उसकी दुनियावी जिंदगी खराब हो ना उसकी जिंदगी खराब हो। यानी इन मुतों को जब तक नहीं तोड़ेंगे तो ये मुमकिन नहीं है हमारे पास। इन मुतों को आहिस्ता आहिस्ता हर एक इंसान जब हिम्मत करेगा टूटेंगे तो आने वाली नस्लें कम से कम इससे बच जाए। अब ये तो इब्तदाई हो गया मुकदमा, अब आइए कि परफेक्ट स्पाउस बेहतरीन शरीक हयात उसको कैसे तलाश किया जाए, ये एक बहुत बड़ा मौजू है। तो इंशाल्लाह थोड़े वक्त में कोशिश करेंगे कि कुछ पॉइंट्स आपको बताएं जो मेन पॉइंट्स, फिर आप सवाल भी कर सकते हैं। इसमें अगर इंसान खता कर ले तो ये जिंदगी की सबसे बड़ी खता होती है, क्योंकि दूसरे जख्म जो है वो ठीक हो जाते हैं मगर ये जख्म जो है बहुत खतरनाक होता है। और ये भी रिसर्च की गई है कि जो डिवोर्सी लोग हैं उनमें कैंसर ज्यादा है कंपेयर टू वो जो कामयाब शादी है उनमें इतना कैंसर का रेशो नहीं। तो ये पूरी जिंदगी जो है इंसान तबाह कर सकता है, आखिर भी तबाह हो जाती है इंसान की। अब पहले हर चीज को समझा जाए कि आखिर निकाह का मकसद क्या है। जब मकसद नहीं समझता इंसान तो खत्म करता है। हम यहां आए हमारा मकसद क्या है, कोई मकसद ही नहीं है तो फिर यकीनन गलतियां होंगी। पहले तो ये सोचे कि निकाह का मकसद क्या है, एक मकसद है, दो मकसद है, तीन है, क्या मकसद है। जवानी में तो प्रेशर होता है, ये जो भूख लगती है इस भूख को मिटाने के इंसान निकाह में हो जाता है, लेकिन क्या यही मकसद है? ये अवली मकसद नहीं है कि हम समझें कि बस यही मकसद। अगर यही मकसद तो फर्ज करिए मुवक्कत निकाह से भी हल हो सकता है। निकाह का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ एक भूख है हमने मिटा पा। इस्लाम में निकाह का बहुत बड़ा मकसद है, वो इसी हदीस को आप समझे कि आधा ईमान है आपका, आधा ईमान निकाह है। आधे ईमान को यूं समझे कि आधी परफेक्शन जो है आपकी वो नहीं हो सकती है जब तक कि निकाह ना करें। जितने भी अल्लाह वाले बंदे हैं वो आप इबादत करें लेकिन निकाह के बगैर आप नाफिस रहेंगे, आधी परफेक्शन। यानी निकाह का एक बहुत बड़ा मकसद है कि इंसान तकामुल परफेक्शन इसे कहते हैं, कमाल हासिल करें। आप अकेले रहे कमाल हासिल नहीं हो सकते, आप अकेले जब चाहे सो गए, जब चाहे चले गए, जब चाहे गए, जब घर गए नहीं गए, सब आप अकेले हो सकते। लेकिन जब निकाह में कोई खातून की बच्ची आती है तो आपकी जिम्मेदारी, अब यहां से सेक्रीफाइस शुरू, सेक्रीफाइस जो है इससे तकाबुल मिलता है। अगर इंसान सेक्रीफाइस है, इंसान हैवान है, खुदगर्द, इबादत भी सबसे अफजल इबादत वो है जो इंसान जितनी सेक्रीफाइस देता है ज्यादा उसकी उतनी ईमान के लिए भी बनती है। असल सेक्रीफाइस है। अब आप बीवी के लिए क्या सेक्रीफाइस दे रहे हैं? बीवी मां है उसकी खिदमत कर रहे, अपनी ख्वाहिश को कुर्बान कर रहे, اور یہ نکاح جو ہے خود عبادت ہے مجاز کی. سب سے بڑی سیکریفائز ایک اور ہے جو لوگ نہیں سمجھتے مثلا, کیونکہ اس حدیث کو سمجھیں گے سیکریفائز کتنی بڑی ہے, پرفیکشن کا پتہ چلتا ہے. اکیلے پتہ نہیں چلتا ہے کہ میرے اندر کتنا ایمان ہے, میرے اندر کتنا کنٹرول ہے. ساری زندگی آپ عبادت کرتے ہیں پتہ نہیں چلے گا, شادی کے بعد پتہ چلتا ہے میرے اندر کنٹرول کتنا ہے, میرے اندر پاور ہے ایمان کا. دیکھیے حدیث میں کہ جب نکاح کرتے ہیں تو آپ کی ایک رکعت جو ہے نا 70 رکعت ہو جاتی ہے, تو یہ مفت میں ہو جاتی ہے. خدا عادل ہے, ایک انسان بچارا 70 رکعات پڑھنے میں کتنا ٹائم, ایک بیوی کے ساتھ کب شب لگایا اس کا اتنا سوال, اس کو جسمانی لذت بھی مل رہی وہ بےچارا تو مت کرنا. ایک اور حدیث اس سے بھی زیادہ عجیب, حدیث میں کہ نکاح جو کر لے نا بیوی کے ساتھ سوتا رہے, شادی شدہ بیوی کے ساتھ سوئے اور غیر شادی شدہ بےچارا نماز تہجد پڑھے, تو شادی شدہ کو نماز تہجد کا ثواب مل جاتا ہے, حالانکہ وہ پڑھتا بھی صرف بیوی کے ساتھ سوئے ہوئے. اب یہ حدیث جو ہے اس کے پیچھے ایک میسج ہے, یہ مفت میں نہیں ملتا ثواب, ہو ہی نہیں سکتا. خدا عادل, ایک بیوی کے ساتھ سوتا رہے اس کو نماز پہلے کا سوال, اس کے پیچھے سیکریفائز ہے اور یہی اصل بات ہے. مطلب دیکھیے نکاح کے بعد حدیث میں ہے کہ آپ کے تین باپ ہیں تین مائیں ہیں, ایک تو وہ باپ ہیں جو آپ کے جس کی وجہ سے دنیا میں آئے, دوسرا وہ باپ ہے جو آپ کو علم دے آپ کی تربیت کرے, تیسرا وہ باپ ماں ہے جو آپ کو بیٹی دے یا بیٹا دے, یعنی ساس سسر جو ہے وہ باپ اور ماں. اب یہی اصل امتحان ہوتا ہے. بس ہمارے والد ہیں یا آپ کے والد, ہم یوز ٹو ہیں جس طرح سے بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, ان کی بری عادتیں بھی ہم کو بری اتنی زیادہ نہیں لگتی, جو یوزڈ ہے اپنے ماں باپ کے. اب ساس سسر اس کو باپ کی جگہ دینا یہی اصل بہت بڑی بات, یہ جب دیں گے تو وہ ایک رکعت 70 رکعت بنے گی, یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کے باپ نے آپ کو ڈانٹ دیا کوئی بات نہیں, اب ساس سسر ڈانٹے یہ ہمیں کیوں ڈانٹ رہے ہیں, یعنی ہم ان کو ماں باپ کی جگہ نہیں دیتے, بہت مشکل ہے. اکثر جھگڑے یہیں سے ہوتے ہیں کہ ہم ایکسپٹ نہیں کرتے ان کو وہ مقام دے جو ہمارے ماں باپ کا, اور جب ہم یہ سیکریفائز دیں گے اس وقت ایک رقم جو ہے بہت مشکل ہے, کیونکہ الگ کلچر ہے الگ مذہبی, بعض دیکھیں لفظ ہوتے ہیں بعض گھروں میں عام ہوتے ہیں, اچھے نہیں ہوتے وہ یوز ہوتے ہیں, دوسروں کے وہ گالی ہوتی ہے. مثلا دیکھیے عرب لوگ جو ہے مذہب میں کہتے ہیں حرام حرام ہی حرام زیادہ بنے گالی ہے, ٹھیک, وہ چور کو حرام ہی کہتے ہیں مثلا, یہ بعض گھروں میں ایسی مذاق کے تو بڑے بدماش ہو, بدماش بعض جگہوں پہ برا سمجھا جاتا ہے, تو بس ہماری لینگویج ان کی لینگویج میں کچھ فرق ہوتا ہے, کچھ لفظ ہوتے ہیں. ہمارا باپ ہمیں وہ کہہ دے تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, وہ جب کہتا ہے تو ہمیں بہت بڑا لگتا ہے برا لگتا ہے, تو یہ ایک بڑا جہاد ہے کہ ہم سالوں لگتے ہیں کہ ساس سسر کو اب وہ مقام دے باپ کا, اور وہ بیوی کے لیے بھی ہوتا ہے, یعنی وہ جو دلہن بن کے آتی ہے کہ وہ بھی کہ ساس سسر کو وہ مقام. اب یہ پورا لمبی بحث ہو جائے گی, اس کو میں نہیں دیتے کہ جس کے جہاز سے جھگڑے ہوں گے ساس سسر کے اور ساس اور بہو کے, وہ ساری جہادت ہے کہ رائٹس کا پتہ نہیں ہوتا, وہ بحث کریں گے تو اصل موضوع رہ جائے. تو اب آپ نے دیکھا یہ پرفیکشن ہے, آپ پتہ چلے ہمارے اندر کتنا کنٹرول ہے, ہم اس کو باپ سمجھتے ہیں نا, اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں, بہت مشکل ہے. تو ایک رکعت 70 رکعت اور اس بھی सारे ख्वाहिशात टकराते हैं, जैसे आप एक चीज चाह रहे हैं वो दूसरी चीज चाह रहे हैं, यहां सेक्रीफाइस का मसला होता है। अब ये परफेक्ट अभी तक हम उसके पीछे हैं, अभी असल मौजू तक नहीं पहुंचे, मुकदमे से हम निकलना चाहते हैं कि परफेक्ट रिस्पॉन्स कैसे मिले और इंसान गलती ना करता है। एक तो मकसद अगर गलत है लेकिन गलती मकसद से भूख मिटाना नहीं है, परफेक्शन हासिल करना है, बस एक का मकसद है परफेक्शन नहीं, उसके बाद जो दूसरा बड़ा मकसद है औलाद साले। मौलाना इस्लाम ने कहा कि मैं शादी करता हूं, मकसद क्या है कि ऐसा बच्चा पैदा हो जो अजीम मकसद है इमाम हुसैन का करबला में उसमें मददगार, तो उसके लिए ऐसी खातून जो बहुत पाक हो, घराना पाक हो, ताकि ऐसा बचाओ। तो अब मकसद जो है दूसरा बड़ा मकसद जो है औलाद साले, क्योंकि हमारे जाएंगे तीन चीजें बाकी रहती है अहमाल नामे में देखी आती है, एक औलाद साले है। तो अब दो बड़े मकसद होते हैं परफेक्शन औलाद साले प्लस गुनाह से बचना, ताकि इंसान गुनाह से बचे ईमान मुकम्मल। अब जब हम शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं तो कह सकते 90% लोग इन चीजों को भूल जाते हैं। परफेक्शन से मुराद यह है कि बीवी ऐसी हो शादी के बाद आपकी इबादत में इजाफा हो, यानी कि नमाज भी छोड़ जाए। परफेक्शन यह है कि बीवी ऐसी हो कि शादी के बाद मोहब्बत खुदा में इजाफा हो, असलन इसकी तरफ तवज्जो नहीं होती, तो मकसद ये नहीं होता, मकसद सिर्फ लज्जत मादी होता, उसके जबरदस्त नुकसान होते। असल ये आप देखिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम
निकाह के बाद हजरत खदीजा रसूल खुदा हुक्म खुदा के 40 दिन मुसलसल एक दूसरे से जुदा होकर इबादत करें। पैगंबर है रहमतुल्लिल आलमीन है, ये हमारे लिए ट्रेनिंग है। खुदा ने अगर देना हो तो वैसे भी दे सकते, तो देखिए इसकी तरह असल हमारी तवज्जो नहीं है। 40 दिन हजरत खदीजा इबादत कर रही है, रसूल खुदा इबादत कर, फिर हुक्म हुआ कि अब जाके आप मिले, तो खुदा ने जो तोहफा दिया 40 को हजरत फातिमा ज़हरा
सलाम।
निकाह जो है वो सबब बना इबादत से खुदा का, मोहब्बत खुदा का। 40 दिन पैगंबर ये समझे एतकाम 3 दिन का, 40 दिन का एतकाम हुआ सिर्फ खुदा से ला लिया। और इसी तरह का वाकया है कि एक बेचारा काले रंग का सहाबी था जिसका घर भी नहीं था, ये बेचारे रह चुके बातचीत में हुजूर पाक ने उसे कहा कि तुम शादी क्यों नहीं करते, बेचारे की शक्ल भी खास नहीं थी, काला भी था पर शक्ल काले के अंदर भी बेचारे की इतनी अच्छी नहीं थी, पैसा भी घर में नहीं था। उसने कहा कि किबला मुझे कौन देगा, न मेरा घर है न मेरी शक्ल है। हुजूर पाक ने फरमाया नहीं, अल्लाह की राह में से मायूस ना। तो सबसे जो खूबसूरत लड़की थी और सबसे बहुत बड़ा एक सरदार आदमी था पैसे में, हुजूर पाक ने कहा कि जाके उससे रिश्ता बनाओ। वो इतना बड़ा सरदार है, मैं गुलाम हूं, कहीं मेरी पिटाई ना हो जाए बेस्ती ना हो जाए, जाओ अल्लाह की जान पे भरोसा कर। तो चला गया बेचारा दर्द अफसर बाबा ने सुना, बड़ा वो मोमेंट था, लेकिन जवाब नहीं दे सका कि सियाल जी को बेटी दे दी। कहा ठीक है, फिर मैं हुजूर पाक से बात करूं, इस तरह से मिलो। तो बेटी उसकी बड़ी ममता थी, वो जो है पीछे सुन ली, बाप से कहा कि बाबा ये अच्छी बात नहीं कि हुजूर पाक ने भेजा, मैं राजी हूं। ठीक है, अब बेचारे की शक्ल है न घर है, शादी हो गई खूबसूरत तरीन लड़की से और सरदार अमीर लड़की से। जब निकाह हुआ इसका तो पूरी रात मुसल्ली इबादत पे ही रोता रहा, यानी शुक्र करता। तो दुल्हन ने कहा कि तुमने निकाह क्यों किया? कहा क्या मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा न करूं? यानी निकाह खुद सबब है मोहब्बत खुदा बढ़ने का, लेकिन इसकी तरफ असलन तवज्जो नहीं होती है। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है ना कि हमें कोई तोहफा दे, हम तोहफे को चूम रहे हैं, तो तोहफा देने वाला है उसका शुक्रिया भी अदा नहीं है। शादी जो खुदा की तरफ से तोहफा है, इसीलिए तोड़ कर नमाज शुक्राना है कि पहले खुदा का शुक्रिया। तो आपने देखा कि निकाह का ही मकसद है मोहब्बत खुदा बढ़े, परफेक्शन बढ़े, औलाद साले। अब इसका मकसद ही नहीं होता, ये अक्सर 90% 80% होता। क्या देखा जाता है? सिर्फ दो चीजें, एक हुस्न देखा जाता है और एक माल देखा जाता है कि ना ये लड़का कितना मालदार है या लड़की कितनी मालदार, जहेज कितना मिलेगा या शक्ल कैसी। ये दो बहुत बड़ी गलती होती है जिसकी वजह से शादियां नाकाम होती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, उनको भी नहीं देखा जाता। सिर्फ शक्ल हुस्न जाहिरी, असल हुस्न जो है वो इंसान का, इंसान के रूप है। यही जो एक बार इसका नाम बालगंज जो एक बार था साथी, शक्ल का काला था, शक्ल कोई नहीं थी मगर उसकी रूह कितनी पाक थी। अगर रूह की खूबसूरती की तरफ कोई नहीं देखता, ये मारिफत तो नफ्स की कमजोरी है कि असल इंसान का वजूद जो है वो रूह है। ये वाकया है, स्टोरी है कि गाड़ी में लोग पाकिस्तान में छत पे भी सफर करते हैं, अफ्रीका में से दो आदमी छत पे सफर कर रहे। तो एक आदमी जो था वो शक्ल का अच्छा नहीं था बेचारा, शक्ल उसकी खास नहीं, काला था कुछ इस तरह से। उसके साथ बैठा हुआ था, उसको उसकी शक्ल अच्छी नहीं रही, तो कोई और अच्छा आदमी जो मेरे साथ आकर बैठ जाए। तो अचानक वो आदमी ऊपर उठा, उठा तो उतारे होती है तो उसकी गर्दन कट सकती थी, जो इस काले से नफरत कर रहा था उस काले ने अपनी जान बाजी पे लगा के उसको बचा लिया। फिर वो खुद पे लानत मलामत करने लगा कि मैं कहता था ही उठ जाए, मैं इसकी जाहिरी शक्ल को देख रहा था मगर इसकी बातिनी शक्ल कितनी नूरानी, मेरी जान बचा ली। तो हम भी जाहिरी शक्ल देखते, मौलानी फरमाते हैं कि अगर जाहिरी खूबसूरती देखोगे तो जाहिर सांप जो है ना उसकी खाल बहुत नरम होती है मगर उसका जहर बहुत खतरनाक। तो अगर तुमने लड़की का अखलाक नहीं देखा, लड़की वालों ने लड़कियों का अखलाक बातनी उसे नहीं देखा, जाहिर ही चमड़ी देखी है, तो उसका जो जहर है बहुत खतरनाक। अब यहीं पर इंग्लैंड में बेचारे मोहम्मद पता नहीं जिंदा है नहीं, वो किसी जमाने में यहाँ डॉक्टर कदीर की तरह जिसने एटम बम बनाया, पाकिस्तान के हीरो थे, 50 साल पहले आए हुए थे। तो मुझे खुद ऑफर की बरतानिया ने निशन दी, मैं पाकिस्तान में साइंटिस्ट में बहुत बड़ा, ऑस्ट्रेलिया में मैंने कहा ब्रिटिश बेहतर है, मैंने ब्रिटिश अमर से शादी कर ली, बड़ी तनख्वाहें थी, मैं बड़ा खुश था, तीन चार बेटियां हो गई, तब तक मैं नशे में था पता नहीं। अभी एक बच्ची जवान हुई, उसने कहा कि मैं जो है ये सिख से जाती कर रहा था, अब मुझे अपना वो सारा इस्लाम याद आया, याद आया, तो कैसे سیکھ سے کیا نکل میں تھوڑا گرم ہوں سر پولیس کو بلا دیا میرے حساب میں چلی گئی سکہ پھر میں ہوش میں آیا دیر ہو چکی تھی پھر دوسری بھی ایسے بھاگ گئی تیسری بھاگ گئی چار لڑکیاں چلی گئی پھر میں چلو بیوی تو ہے وہ گوری تھی مگر وہ بھی پینشن کے انتظار میں تھی جیسے پینشن ملی ملی ٹھیک ٹھاک تلاق لے کر آدھے پیسے لے کر وہ بھی بھاگ گئی بولے ابھی میں پڑا ہوا ہوں ایسے اور لاؤ سے مر جاؤں گا تو یہ لاش اٹھا کے پھینک دے گی اسے کتا مر گیا بیچارا کرتے ہی لوگ کو بتائے آپ جاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ظاہری چمڑی حسن پہ وہ پاگل ہو جاتے ہیں اور ابھی ظاہری پہ دیکھو اس کی خان کتنی نرم ہے سام کی وہ عورت جس کے اندر ایمان نہیں ہے وہ مرد اس کی ایمان ظاہری حسن ہے وہ زہریلا سام سے خطرناک ہے وہ تمہاری زندگی تمہارا خاندان سب برباد کر دے کبھی دیکھیے غلط عورت سے نکاح کرنے کی وجہ سے خود تباہ نہیں ہوتا شاید پورا خاندان اس کا تباہ ہوتا ہے عورت فتنے کرا سکتی ہے جھگڑے کرا سکتی ہے اس کو ماں باپ سے نکاح کرا کیا کیا نہیں کرا سکتی اسی طرح سے لڑکی سے لڑکا تو فرمائے کبھی بھی یہ اس کو مین نہ سمجھا کرو مین جو اصل حسن ہے وہ انسان کی روح ہے اس کے باطن دیکھو نہ کہ ظاہر 90% لوگ ظاہر دیکھتے ہیں نمبر دو امام جعفر صادق ہم اگر دولت کی وجہ سے تم شادی کرتے ہو گے یہ کبھی سکون نہیں ملے یہ ہوا ہے کئی لوگوں کی مثال ہے دولت کی وجہ سے شادی کی نہ دولت ملی نہ عزت ملی نہ سکون ملا وہ ذلیل ہوتے رہے اور یہاں لوگ پاسپورٹ کی وجہ سے شادی کرتے ہیں ان کا بھی اچھا نشر برا ہے پوری زندگی جو ہے وہ البتہ نیت انسان کی نہ ہو عمل سے پتا چلتا ہے اس کی نیت کیا ہے اگر پاسپورٹ کی وجہ سے شادی جن لوگوں نے کی ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک عذاب میں مبتلا ہے سب اشتباہات ہیں انسان کو نہیں دکھا جاتا ہے پاسپورٹ کو دکھا انسان کو نہیں دکھا جاتا ہے فرد کو نہیں دکھا جاتا انسان کی انسانیت کو نہیں دکھا جاتا ایک پرچے کو پیپر کو دکھا جاتا پیپر سے شادی ظاہر کے لیے لوگ سکون زندگی میں نہیں پاتے ہاں نیت صاف ہو ٹھیک ہے اس کے پاس پوٹ لگا لیکن مثلاً انسان کی اگر یہ نیت ہے بابا تباہ برباد ہو جاتے ہیں تو امام علیہ السلام نے وہی فرمایا کہ پہلی چیز جو تمہیں دیکھنا ہے فرمایا یہ ایک گلے کا توک ہے شادی توک ہے گلے میں ڈال تم خود ڈال رہے ہو خود کوئی اور نہیں ڈال رہے اگر تم نے غلطی کی یہ تمہارا گلا گھٹے گا زندگی گھٹن میں بدل جائے گی تو ایسا تو نہ ڈالے کہ خود تمہارا ہی گلا دب جائے سوچ سمجھ کے گلے میں ایک دم ڈال لڑکی اور لڑکی دونوں کرے تو زندگی انسان کی برباد ہو سکتی ہے